नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। हमारे सामने है साइंस प्रिज्म का ताज़ा अंक अक्टूबर 2025 का। इसमें दवा, जीन्स, हमारा बर्ताव, दिमागी सेहत और हाँ, मीडिया की भूमिका जैसे कई दिलचस्प विषय हैं। आज हम इस अंक के कुछ खास और अहम जानकारियों पर गौर करेंगे। खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विज्ञान हमारी सेहत और समाज में हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा है और कैसे छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, दवा की खुराक यानी डोजेज। डॉक्टर अक्सर पर्ची पर लिख देते हैं दिन में 2 बार खाने के बाद। आसान लगता है, पर क्या हम हमेशा इन हिदायतों को पूरी तरह समझते या मानते हैं? जरा गहराई में उतरते हैं। जब डॉक्टर डोज बताते हैं तो लगता है सीधा सा निर्देश है, लेकिन इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है। ये सिर्फ एक सुझाव तो नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये सुझाव नहीं, ये पक्का विज्ञान है। दवा की सही डोज तय करने के लिए बहुत सख्त क्लिनिकल ट्रायल और लैब टेस्ट होते हैं। 2 टर्म्स यहाँ महत्वपूर्ण है। एक है ED50, मतलब इफेक्टिव डोज 50। ये वो डोज है जो स्टडी में शामिल आधे लोगों में असर दिखाती है।
अच्छा।
और दूसरी है LD50, यानी लीथल डोज 50। ये वो मात्रा है जो लैब में टेस्ट किए गए आधे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हुई। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो हमें बताता है कि दवा कितनी सुरक्षित है। इसे थेरियोटिक इंडेक्स या TI कहते हैं।
ओ, तो ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन हुआ।
हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझे जैसे गुब्बारे में हवा भर रहे हों। ED50 वो हवा है जिससे गुब्बारा काम लायक हो जाए, और LD50 वो जिससे वो फट जाए। इन दोनों के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, मतलब वाइड TI, दवा उतनी ही सेफ मानी जाती है।
जैसे कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे पेनिसिलिन है, इसका TI काफी बड़ा है, तो अगर डोज थोड़ी कम ज्यादा हो भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ पैरासिटामोल है, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, इसका TI बहुत छोटा है, नैरो है।
अच्छा।
हाँ, मतलब जरा सी ज्यादा डोज भी लिवर के लिए खतरनाक हो सकती है।
ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और ये डोज हर किसी के लिए अलग क्यों होती है?
क्योंकि हम सब अलग हैं, सीधा सा हिसाब है। डोज कई बातों पर निर्भर करती है, आपका वजन, आपकी उम्र, जैसे बच्चों का शरीर दवा को अलग तरह से प्रोसेस करता है।
हाँ, ये तो है।
फिर आपका अपना मेटाबॉलिज्म कैसा है, जो आपके जीन्स, आपकी डाइट, यहाँ तक कि आपके पेट में जो बैक्टीरिया है उन पर भी निर्भर करता है।
अरे वाह।
और हाँ, आपके अंग कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, खासकर लिवर और किडनी, क्योंकि यही दवा को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये सब वैज्ञानिक कारण है, कोई अंदाजा नहीं।
समझ गया। और दवा सही समय पर लेना, वो क्यों इतना जरूरी है? इसमें क्या विज्ञान है?
इसमें भी गहरा विज्ञान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दवा शरीर में जाती कैसे है, कहाँ जाती है, कैसे टूटती है और फिर कैसे बाहर निकलती है। इसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं।
फार्माकोकाइनेटिक्स।
हाँ, फार्माकोकाइनेटिक्स।
हाँ।
हर दवा की एक हाफ लाइफ होती है,
अच्छा।
मतलब वो समय जिसमें शरीर से दवा की मात्रा आधी रह जाती है।
अच्छा।
इसी हाफ लाइफ से तय होता है कि अगली डोज कब लेनी है, ताकि खून में दवा का लेवल सही बना रहे, ना बहुत कम कि असर ही ना हो और ना बहुत ज्यादा कि साइड इफेक्ट्स होने लगे या नुकसान हो।
तो मतलब देर से ली तो असर कम और जल्दी ले ली तो नुकसान।
बिल्कुल, जैसे एंटीबायोटिक्स है, एमोक्सिसिलिन मान लीजिए, अगर आप नियमित रूप से नहीं लेंगे
हाँ।
तो खून में उसका लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, सारे बैक्टीरिया नहीं मरेंगे,
हाँ।
और जो बचेंगे वो ज्यादा ताकतवर, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट बन सकते हैं।
ये तो गंभीर बात है।
हाँ, या खेत ब्लड प्रेशर की दवाएं ले लीजिए। कई दवाएं ऐसी बनी होती हैं कि 24 घंटे असर करे। अगर आप एक डोज लेना भूल गए तो अगले दिन ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
पर अगर कोई डोज लेना भूल जाए तो? मैंने सुना है कुछ लोग अगले बार डबल डोज ले लेते हैं, क्या ये ठीक है?
नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, खासकर कुछ दवाओं के साथ, जैसे खून पतला करने वाली दवाएं जिन्हें ब्लड थिनर्स कहते हैं।
हाँ।
उनकी डबल डोज लेने से बहुत गंभीर ब्लीडिंग हो सकती है। आम नियम ये है, अगर आपको डोज याद आए और अगली डोज के आधे से ज्यादा समय बाकी है तो आप भूली हुई डोज ले सकते हैं।
अच्छा।
लेकिन अगर अगली डोज का समय करीब आ गया है तो भूली हुई डोज को छोड़ दें और अगली डोज अपने तय समय पर ही लें। डबल डोज कभी ना करें।
ठीक है, ये याद रखना होगा। और कोर्स पूरा करना क्यों जरूरी है? अक्सर लोग जैसे थोड़ा ठीक महसूस करते हैं दवा बंद कर देते हैं।
हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और खतरनाक भी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स के मामले में फिर वही बात आती है, लक्षण भले ही चले गए हों लेकिन हो सकता है सारे बैक्टीरिया न मरे हों। जो सबसे मजबूत वाले बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं, फिर वो दोबारा बढ़ सकते हैं और आपको फिर से बीमार कर सकते हैं।
और शायद इस बार दवा भी कम असर करे।
बिल्कुल, वो ड्रग रेजिस्टेंट बन सकते हैं। इसी तरह स्टेरॉइड्स जैसी दवाएं हैं, उन्हें अचानक बंद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे एड्रीनल क्राइसिस हो सकता है।
एड्रीनल क्राइसिस, वो क्या होता है?
हमारा शरीर खुद कॉर्टिसोल नाम का एक जरूरी हार्मोन बनाता है। जब हम बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं तो शरीर बनाना कम कर देता है। अचानक दवा बंद करने पर शरीर एकदम से पर्याप्त कॉर्टिसोल नहीं बना पाता और ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। दिमागी सेहत की दवाएं भी हैं, उन्हें अचानक बंद करने से विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा घबराहट होना। इसीलिए डॉक्टर हमेशा धीरे धीरे डोज कम करवाते हैं ताकि शरीर एडजस्ट कर सके।
ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अब एक और बात, कुछ दवाएं सुबह लेने को कहा जाता है, कुछ रात में, कुछ खाने के साथ, कुछ खाली पेट, इसका क्या लॉजिक है?
हाँ, इसका भी अपना विज्ञान है। इसे क्रोनोफार्माकोलॉजी कहते हैं।
क्रोनोफार्माकोलॉजी?
जी, इसका मतलब है कि दवा का असर दिन के किस समय ली जा रही है इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हमारे शरीर की अपनी एक 24 घंटे की आंतरिक घड़ी होती है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं रात में ज्यादा असरदार होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह होने वाले ब्लड प्रेशर सर्ज को कंट्रोल करने में मदद करती हैं।
अच्छा।
अस्थमा की कुछ दवाएं शाम को बेहतर काम कर सकती हैं ताकि सुबह के समय वायुमार्ग सिकुड़ने की समस्या कम हो। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं जैसे स्टैटिन्स अक्सर रात में लेने की सलाह दी जाती है।
क्यों?
क्योंकि हमारा शरीर सोते समय ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। और खाने का क्या?
खाने का भी बहुत असर होता है। कुछ दवाएं खाली पेट लेनी होती हैं ताकि वो अच्छी तरह से खून में जज्ब हो सकें, जैसे थायराइड हार्मोन की दवा या कुछ एंटीबायोटिक्स। दूसरी तरफ कुछ दवाएं खाने के साथ लेनी चाहिए, जैसे आइब्यूप्रोफेन, ताकि पेट में जलन या गड़बड़ ना हो। कुछ चीज़ें तो दवा के असर में रुकावट भी डाल सकती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही वगैरह।
हाँ,
वो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि दवा किस रूप में है ये भी मायने रखता है। जैसे स्लो रिलीज टैबलेट्स होती हैं ना, उन्हें कभी तोड़ना या चबाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दवा की पूरी डोज एक साथ शरीर में चली जाएगी, जो खतरनाक हो सकता है।
समझ गया। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, एक्सपायरी डेट्स, क्या वो वाकई मायने रखती हैं या बस कहने के लिए होती हैं?
ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, एक्सपायरी डेट निर्माता की गारंटी होती है कि उस तारीख तक दवा पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है अगर उसे सही तरीके से स्टोर किया गया हो। समय के साथ, खासकर गर्मी, रोशनी या नमी के संपर्क में आने से दवा का एक्टिव इंग्रेडिएंट धीरे धीरे खराब हो सकता है।
तो क्या एक्सपायरी के बाद दवा बिल्कुल बेकार हो जाती है?
हमेशा नहीं। अमेरिका में सेना ने एक स्टडी की थी, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, SLEP। उसमें पाया गया कि सही ढंग से स्टोर की गई कई दवाएं, खासकर गोलियां और कैप्सूल्स, एक्सपायरी डेट के कई सालों बाद भी सुरक्षित और काफी हद तक प्रभावी थीं। कुछ तो 10 साल बाद भी 90% से ज्यादा असरदार थीं।
अरे वाह, तो फिर एक्सपायरी डेट का क्या मतलब?
मतलब ये कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि कुछ दवाएं हैं जिनकी एक्सपायरी डेट का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे?
जैसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये एक्सपायर होने के बाद जहरीला बन सकता है और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसुलिन है, वो अपना असर बहुत जल्दी खो देता है, खासकर अगर उसे फ्रिज में ना रखा जाए। नाइट्रोग्लिसरिन, जो दिल के मरीज इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो जहां तक दर्द निवारक जैसी कम जरूरी दवाओं का सवाल है, हो सकता है एक्सपायरी के बाद वो थोड़ी कम असरदार हो, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं के मामले में कम असर या किसी हानिकारक चीज में बदल जाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता।
सही बात है। और कुछ खास दवाएं हैं जिन्हें स्टोर करने का तरीका भी बहुत अहम होता है?
हाँ बिल्कुल, जैसे टीके, इंसुलिन और कुछ बायोलॉजिकल दवाएं होती हैं, इन्हें ठंडी जगह पर रखना होता है, आमतौर पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसे कोल्ड चेन कहते हैं। अगर ये कोल्ड चेन टूट जाए, मतलब दवा ज्यादा गर्म या ठंडी हो जाए, तो वो बेअसर हो सकती है।
ये तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी।
जी, और सिर्फ दवाएं ही नहीं, कुछ खाने पीने की चीजें भी दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं।
जैसे
एक मशहूर उदाहरण है ग्रेपफ्रूट यानी चकोतरा का जूस। ये लिवर के कुछ एंजाइम को ब्लॉक कर सकता है जो कई दवाओं को मेटाबोलाइज करते हैं। इससे खून में दवा का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ सकता है।
बाप रे।
हाँ, शराब के साथ नींद की दवाएं या पेन किलर लेना बहुत खतरनाक है। इससे सांस धीमी पड़ सकती है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी हैं, जैसे सेंट जॉन वॉट। ये गर्भ निरोधक गोलियों का असर कम कर सकता है।
ये जानना तो बहुत जरूरी है। और आपने जीन्स की बात की थी।
हाँ, हमारे जेनेटिक अंतर भी इस बात को प्रभावित करते हैं कि हमारा शरीर दवा को कैसे प्रोसेस करता है। कुछ लोग दवा को बहुत तेजी से मेटाबोलाइज करते हैं तो उन पर दवा कम असर करती है। कुछ लोग बहुत धीरे करते हैं तो उनमें साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा होता है। इसी के लिए अब फार्मों को जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ रही है ताकि पता चल सके कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सी दवा और कितनी डोज सही रहेगी।
सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है, जैसे पैरासिटामोल का उदाहरण और दवाओं के आपस में टकराव के बारे में।
हाँ, पैरासिटामोल वैसे तो सुरक्षित दवा है अगर सही डोज में ली जाए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो है। मतलब सुरक्षित और खतरनाक डोज में अंतर बहुत कम है। जो रोज की तय सीमा है उसे पार नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी ज्यादा मात्रा भी अगर बार बार ली जाए तो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
और दवाओं का आपस में टकराव।
हाँ, ये भी होता है। कई दवाएं लिवर में एक ही एंजाइम के जरिए प्रोसेस होती हैं। जब ऐसी दो दवाएं एक साथ ली जाती हैं तो वो उस एंजाइम के लिए मुकाबला करती हैं। इससे एक दवा का लेवल बढ़ सकता है और दूसरी कम असरदार हो सकती है।
कोई उदाहरण?
जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स अगर ब्लड थिनर्स के साथ ली जाएं तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, या कुछ एंटीबायोटिक्स गर्भ निरोधक गोलियों का असर कम कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि आप कौन कौन सी दवाएं ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर की लिखी हो, ओवर द काउंटर हो या हर्बल सप्लीमेंट हो।
भविष्य में क्या उम्मीदें हैं इस फील्ड से?
भविष्य पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का है। ऐसी दवाएं जो खास आपके शरीर के लिए बनी हो। नैनो मेडिसिन पर काम हो रहा है जो दवा को सीधे बीमारी वाली जगह तक पहुंचाएगी। प्रोग्रामेबल पिल्स की बात हो रही है जो शरीर में जाकर किसी खास समय पर दवा रिलीज करेंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और वियरेबल सेंसेस की मदद से रियल टाइम में डोज को एडजस्ट किया जा सकेगा।
कमाल है। तो इस सब का कुल मतलब क्या निकलता है, निचोड़ क्या है?
मतलब साफ है, डॉक्टर का पर्चा सिर्फ निर्देशों की एक लिस्ट नहीं है, वो दशकों की रिसर्च और विज्ञान का नतीजा है। हर मात्रा, हर समय, हर शर्त सब एक प्लान का हिस्सा है ताकि दवा का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और खतरा कम से कम हो। तो जब हम डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हैं तो हम असल में दवा के पीछे के विज्ञान के साथ साझेदारी कर रहे होते हैं।
बिल्कुल सही ला। दवा की डोज और समय की बात तो हुई, पर जैसा आपने इशारा किया, एक और पहलू बहुत अहम हो रहा है आजकल, ये कि क्या दवा आप पर उतनी ही असरदार होगी जितनी किसी और पर। यहीं पर फार्माकोजेनोमिक्स यानी जेनेटिक्स के आधार पर पर्सनलाइज दवा का कॉन्सेप्ट आता है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच को चुनौती देता है ना?
एकदम सही। फार्माकोजेनोमिक्स इसी सवाल का जवाब ढूंढता है कि हमारे जीन्स हमारी दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। क्यों एक ही दवा किसी के लिए जीवन रक्षक साबित होती है, किसी के लिए बिल्कुल बेअसर रहती है और किसी के लिए खतरनाक साइड इफेक्ट्स पैदा कर देती है।
हाँ, ये सवाल तो है।
हमारे जीन्स ये तय करते हैं कि हमारे शरीर के एंजाइम दवा को कितनी तेजी से प्रोसेस करेंगे या तोड़ेंगे। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स उन्हें शरीर में कैसे ले जाएंगे और हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स उनसे कैसे जुड़ेंगे, ये सब जीन्स पर निर्भर करता है।
क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहा हो?
बिल्कुल। एक बहुत आम उदाहरण है वॉफरिन का। ये खून पतला करने की दवा है जो बहुत इस्तेमाल होती है।
हाँ, सुना है इसके बारे में।
तो दो खास जीन्स हैं CYP2C9 और VKORC1। अगर किसी व्यक्ति के इन जीन्स में कुछ खास तरह के बदलाव या वेरियंट्स हैं तो उनका शरीर वॉफरिन को अलग तरह से मेटाबोलाइज करेगा। जेनेटिक टेस्टिंग करके डॉक्टर पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज को कितनी डोज से शुरुआत करनी चाहिए। इससे खतरनाक ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा कम हो जाता है।
ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। ये तकनीक आज किन बीमारियों के इलाज में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है?
इसका सबसे ज्यादा असर तीन क्षेत्रों में दिख रहा है: कैंसर विज्ञान ऑन्कोलॉजी, मनोचिकित्सा साइकैट्री और हृदय रोग विज्ञान कार्डियोलॉजी। कैंसर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक दवा है ट्रास्टुजुमैब, जिसे हर्सेप्टिन भी कहते हैं।
हाँ।
ये दवा सिर्फ उन्हीं मरीजों को दी जाती है जिनमें HER2 नाम का जीन जरूरत से ज्यादा पाया जाता है। HER2 जीन एम्प्लीफिकेशन, जेनेटिक टेस्ट से ये पता लगाया जाता है। मनोचिकित्सा में कुछ खास एंजाइम्स जैसे CYP2D6 और CYP2C19 की टेस्टिंग से पता चल सकता है कि कोई मरीज कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को कैसे मेटाबोलाइज करेगा, तेजी से या धीरे धीरे।
अच्छा।
हाँ, इससे डॉक्टर को सही दवा और सही डोज चुनने में मदद मिलती है, और वो जो ट्रायल एंड एरर वाला तरीका होता है ना कि एक दवा दी, काम नहीं की, फिर दूसरी दी, उससे बचा जा सकता है।
ये तो मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।
बिल्कुल। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस फील्ड ने हमें पुरानी रिसर्च के तरीकों, खासकर उनमें मौजूद पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है ना? खासतौर पर महिलाओं और अलग अलग नस्ली या भौगोलिक समूहों को लेकर।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जानना जरूरी है कि 20वीं सदी में ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स सिर्फ पुरुषों पर होते थे।
सच में? ऐसा क्यों? महिलाओं को अक्सर उनके हार्मोनल साइकिल्स में होने वाले उतार चढ़ाव और प्रेगनेंसी के संभावित खतरे की वजह से ट्रायल्स में शामिल नहीं किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि कई दवाएं बाजार में आ गईं बिना ये ठीक से समझे कि वो आधी आबादी यानी महिलाओं पर कैसा असर करेंगी।
तो इससे दिक्कतें हुईं?
हाँ, इससे महिलाओं में दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की दर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखी गई। इसका एक उदाहरण है जोल्पिडेम, जो नींद की एक आम गोली है। बाद में पता चला कि महिलाएं इसे पुरुषों की तुलना में धीरे मेटाबोलाइज करती हैं।
तो
अगर वो पुरुषों वाली डोज लें तो दवा का असर अगले दिन तक रह सकता है, जिससे सुस्ती और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब महिलाओं के लिए कम डोज रेकमेंड की जाती है।
तो क्या अब ये स्थिति बदल रही है? ट्रायल्स में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, अब नियम सख्त हो गए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। जेंडर को अब एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल वेरिएबल माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ जेंडर तक ही सीमित नहीं है, आनुवंशिक विविधता और अलग अलग आबादी का प्रतिनिधित्व भी उतना ही जरूरी है।
मतलब
ये कि ज्यादातर पुराने क्लिनिकल ट्रायल्स पश्चिमी देशों जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हुए, तो दवाएं भी ज्यादातर वहीं की आबादी के जेनेटिक्स के आधार पर विकसित हुईं।
तो इससे दूसरी आबादी पर असर पड़ता है।
हाँ बिल्कुल पड़ता है। जैसे क्लोपिडोग्रेल दवा है, जो हार्ट प्रोसीजर के बाद खून के थक्के बनने से रोकने के लिए दी जाती है। इस दवा को शरीर में एक्टिवेट होने के लिए CYP2C19 नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। अब पूर्वी एशियाई आबादी में जैसे चीन, जापान, कोरिया में इस एंजाइम के कम सक्रिय, लेस एक्टिव वेरिएंट्स वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं,
तो उनके लिए दवा कम असरदार हुई।
सही, उनके लिए ये दवा उतनी प्रभावी नहीं होती। इसीलिए अब एशिया के कई अस्पतालों में ये दवा देने से पहले जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इसी तरह टीबी की एक मुख्य दवा है आइसोनियाजिड। कुछ लोगों में NAT2 जीन के खास वेरिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इस दवा को बहुत धीरे मेटाबोलाइज करते हैं। ये वेरिएंट्स अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में ज्यादा आम है।
तो उनमें क्या होता है?
उनमें दवा शरीर में जमा हो सकती है और लिवर को नुकसान, टॉक्सिसिटी पहुंचाने का खतरा बढ़ जाता है।
तो फार्माकोजिनोमिक्स इन असंतुलनों को ठीक करने में कैसे मदद कर रहा है?
ये अलग अलग विविध आबादी पर अध्ययन करके और उन जेनेटिक वेरिएंट्स की पहचान करके मदद कर रहा है जो दवा की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत में भी अब इस पर काम शुरू हो गया है। दक्षिण एशियाई आबादी में पाए जाने वाले विशिष्ट आनुवंशिक भिन्नताओं की पहचान की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी आबादी पर किए गए शोध के परिणाम यहाँ सीधे लागू नहीं होते।
तो आज ये फील्ड कहाँ खड़ा है और भविष्य कैसा दिखता है?
हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर हैं। कुछ बड़े अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों में कुछ खास बीमारियों के लिए फार्माकोजिनोमिक टेस्टिंग रूटीन का हिस्सा बन गई है, जैसे कैंसर के इलाज में, खून पतला करने वाली दवाओं के लिए और कुछ साइकियाट्रिक दवाओं के लिए। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने 2500 से ज्यादा दवाओं के लेबल पर जेनेटिक जानकारी शामिल की है, ताकि डॉक्टर और मरीज सूचित फैसला ले सकें।
ये तो काफी बड़ा नंबर है।
हाँ, और यूके बायोबैंक या अमेरिका का ऑल ऑफ अस रिसर्च प्रोग्राम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो लाखों लोगों की जेनेटिक जानकारी और स्वास्थ्य डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इससे रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य की कल्पना क्या है? इलाज कैसा होगा?
भविष्य की कल्पना ये है कि डॉक्टर आपके जेनेटिक प्रोफाइल को देखकर आपके लिए सबसे प्रभावी और सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवा और डोज चुन सकेगा। इससे वो ट्रायल एंड एरर का दौर खत्म होगा, मरीजों को जल्दी आराम मिलेगा, अस्पताल में भर्ती होने की दर कम होगी और शायद हेल्थ केयर सिस्टम का पैसा भी बचेगा।
ये तो सच में इलाज में क्रांति जैसा लगता है, पर चुनौतियां भी होंगी।
हाँ, चुनौतियां भी हैं। एक तो टेस्टिंग को और सस्ता और तेज बनाना होगा ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। जेनेटिक डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए मजबूत नैतिक नियम और कानून बनाने होंगे।
और ये भी जरूरी होगा कि इसका फायदा सबको मिले।
बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना होगा कि ये तकनीक सिर्फ अमीर देशों या बड़े शहरों तक ही सीमित न रह जाए, वरना ये स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा देगी।
तो इस सब का बड़ा संदेश क्या है? What's the big picture?
बड़ा संदेश ये है कि फार्माकोजेनोमिक्स सिर्फ एक नया वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, बल्कि ये दवा और इलाज को देखने का एक नया नजरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि दवाएं वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। हमारे डीएनए में छुपी हमारी अद्वितीयता और हमारी विविधता, चाहे वो लिंग की हो, जातीयता की हो या भूगोल की, उसका सम्मान करके हम ज्यादा न्यायसंगत, ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रभावी स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये अवधारणा अब हकीकत बन रही है।
दवाओं और जेनेटिक्स की इस दिलचस्प दुनिया से अब एक और अहम विषय की ओर बढ़ते हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक मजबूत किला है और इम्यून सिस्टम उसकी रक्षा करने वाली सेना। लेकिन क्या हो अगर ये सेना कन्फ्यूज हो जाए और अपने ही किले के लोगों पर हमला करने लगे? ऑटोइम्यून बीमारियों में कुछ ऐसा ही होता है ना?
बिल्कुल सही कहा आपने। ऑटोइम्यून बीमारियों में शरीर का रक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम गलती से शरीर के अपने ही स्वस्थ हिस्सों जैसे जोड़, त्वचा या अंगों को बाहरी खतरा समझ लेता है और फिर उन पर हमला करने लगता है। इस हमले से सूजन, इन्फ्लेमेशन, दर्द और धीरे धीरे उन अंगों को नुकसान पहुंचता है। ये असल में सेल्फ यानी अपना और नॉन सेल्फ यानी पराया के बीच पहचान करने में इम्यून सिस्टम की गलती है।
इसका इतिहास भी दिलचस्प है। क्या ये हमेशा से ज्ञात थी?
नहीं, दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक ये माना जाता था कि शरीर खुद पर हमला कर ही नहीं सकता। इसे हॉरर ऑटोटॉक्सिकस कहा जाता था। लेकिन 1904 में एक जापानी डॉक्टर हकारू हाशिमोटो ने पहली बार थायराइड ग्रंथि पर लिम्फोसाइट्स, एक तरह के इम्यून सेल्स के हमले का वर्णन किया। इसे आज हम हाशिमोटो थायराइडिटिस कहते हैं। ये शायद पहली सही ढंग से पहचानी गई ऑटोइम्यून बीमारी थी।
अच्छा।
फिर 20वीं सदी के मध्य में ऑटो एंटीबॉडीज की खोज हुई। ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो शरीर के अपने ही मॉलिक्यूल्स पर हमला करती हैं, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में डीएनए पर हमला करने वाली एंटीबॉडीज। इस खोज ने ऑटो इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को पक्का कर दिया। आज हम 150 से ज्यादा ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में जानते हैं।
150 से ज्यादा? कुछ आम उदाहरण क्या हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना हो?
हाँ, कुछ बहुत कॉमन है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इम्यून सिस्टम पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स पर हमला करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों पर हमला होता है जिससे दर्द, सूजन और अकड़न होती है।
हाँ, ये तो काफी सुना है।
सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस या SLE, जिसे अक्सर लूपस कहते हैं, ये शरीर के कई हिस्सों पर असर कर सकता है, त्वचा, किडनी, हृदय, मस्तिष्क। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, जिसमें नर्व फाइबर्स की सुरक्षात्मक परत माइलिन शीथ पर हमला होता है। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जैसा मैंने बताया, थायरॉयड ग्रंथि पर हमला करता है जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। सोराइसिस है, जिसमें त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD, जिसमें पाचन तंत्र पर हमला होता है।
ये इतनी सारी बीमारियां होती क्यों हैं? क्या कारण पता है और क्या कुछ लोगों को इनका खतरा ज्यादा होता है?
इसका सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। ये काफी जटिल है, लेकिन माना जाता है कि इसमें कई फैक्टर्स का रोल होता है। एक तो जेनेटिक्स है। कुछ खास जीन वेरिएंट्स जैसे HLA जीन के कुछ प्रकार HLA-DR3-DR4 ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में।
अच्छा, तो जीन्स का रोल है।
हाँ, लेकिन सिर्फ जीन्स ही काफी नहीं है, पर्यावरणीय ट्रिगर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा तनाव, खान पान की आदतें, शरीर में हॉर्मोन्स का बदलाव या किसी टॉक्सिन के संपर्क में आना। और तीसरा फैक्टर है इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन में गड़बड़ी, मतलब इम्यून सिस्टम का अपना संतुलन बिगड़ जाना।
और आपने पूछा कि खतरा किसे ज्यादा है, तो एक बात जो साफ तौर पर देखी गई है वो ये कि महिलाओं में ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है।
हाँ, मैंने भी ये सुना है, ऐसा क्यों?
इसके पीछे भी कई संभावित कारण माने जाते हैं। एक तो हॉर्मोन्स हैं, खासकर एस्ट्रोजन जो महिलाओं में प्रमुख हार्मोन है, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये अच्छी बात भी है, पर ये इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव बनाकर ऑटो इम्यूनिटी की तरफ भी धकेल सकता है। कई महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या मासिक धर्म के आसपास लक्षणों में उतार चढ़ाव देखा जाता है।
और दूसरा कारण एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। महिलाओं में 2X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में 1X और 1Y होता है। एक्स क्रोमोसोम पर इम्यून सिस्टम से जुड़े कई महत्वपूर्ण जीन्स होते हैं, तो शायद 2X क्रोमोसोम होने से इम्यून प्रतिक्रिया ज्यादा मजबूत या अलग तरह की हो जाती है। इसके अलावा शायद महिलाएं तनाव, संक्रमण या पर्यावरण के टॉक्सिन्स के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं।
आंकड़े क्या कहते हैं, कितना ज्यादा खतरा है महिलाओं में?
आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। कुल मिलाकर ऑटोइम्यून बीमारियों के लगभग 75 से 80% मामले महिलाओं में होते हैं। कुछ बीमारियों में ये अंतर और भी ज्यादा है, जैसे SLE में 10 में से 9 मरीज महिलाएं होती हैं। थायराइड की ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे हाशिमोटो या ग्रेव्स डिजीज महिलाओं में 7 से 10 गुना ज्यादा आम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है।
ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इन बीमारियों का पता लगाना भी मुश्किल होता है, कैसा है? क्या कोई शुरुआती चेतावनी के संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए?
वो आते जाते रह सकते हैं, फ्लेयर्स एंड रिमिशंस, और कई बार वो दूसरी आम बीमारियों जैसे लग सकते हैं।
तो किन लक्षणों पर गौर करना चाहिए?
कुछ सामान्य संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर वो लगातार बने रहें। बहुत ज्यादा और पुरानी थकान जो आराम से ठीक ना हो, जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न, त्वचा की समस्याएं जैसे रैशेज, त्वचा का रंग बदलना या धूप से ज्यादा सेंसिटिविटी, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द या दस्त, बार बार हल्का बुखार आना या बिना किसी कारण के बाल झड़ना, अगर ऐसे लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। शुरुआती निदान और इलाज से बीमारी को कंट्रोल करने और अंगों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।
इनका इलाज कैसे होता है? क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकती हैं? और रिसर्च में क्या नया हो रहा है?
जैसा मैंने कहा, ज्यादातर ऑटोइम्यून बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन उन्हें अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है इम्यून सिस्टम की असामान्य प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना, सूजन को कम करना, शरीर के अंगों को और नुकसान से बचाना और लक्षणों से राहत दिलाना, साथ ही इलाज के साइड इफेक्ट्स को भी कम रखना होता है। दवाएं बीमारी के प्रकार और कौन से अंग प्रभावित हैं इस पर निर्भर करती हैं। अक्सर कई दवाओं को कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है।
किस तरह की दवाएं?
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शामिल हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन, जो बहुत तेजी से सूजन कम करते हैं लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर है DMRDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जैसे मेथोट्रेक्सेट। ये इम्यून सिस्टम को दबाकर बीमारी को लंबे समय तक कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और हाल के वर्षों में बायोलॉजिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये खास तौर पर इम्यून सिस्टम के किसी खास हिस्से या मॉलिक्यूल को टारगेट करते हैं, इसलिए ये ज्यादा सटीक होते हैं और शायद साइड इफेक्ट्स कम हों। कुछ हल्के मामलों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाएं भी इस्तेमाल होती हैं।
इनमें भी डोजेज और टाइमिंग महत्वपूर्ण होगी।
हाँ बिल्कुल, इलाज अक्सर ज्यादा डोज से शुरू किया जाता है ताकि जल्दी कंट्रोल पाया जा सके, और फिर धीरे धीरे सबसे कम प्रभावी डोज मेंटेनेंस डोज तक लाया जाता है। दवाओं के साथ साथ सहायक उपाय भी जरूरी हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, जीवन शैली में बदलाव जैसे डाइट, एक्सरसाइज और जरूरत पड़ने पर हार्मोन थेरेपी।
रिसर्च किस दिशा में जा रही है?
रिसर्च कई दिशाओं में चल रही है। एक बड़ा फोकस गट माइक्रोबायोम यानी हमारे पेट के बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम के बीच के संबंध को समझने पर है। जेनेटिक्स और पर्यावरणीय ट्रिगर्स के इंटरैक्शन को और गहराई से समझा जा रहा है। तनाव की भूमिका पर भी काफी रिसर्च हो रही है। नई थेरेपीज विकसित की जा रही हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी या रेगुलेटरी टी सेल्स का इस्तेमाल। इनका लक्ष्य सिर्फ इम्यून सिस्टम को दबाना नहीं, बल्कि उसे रीट्रेन करना है ताकि वो शरीर पर हमला करना बंद कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जो डॉक्टरों को पर्सनलाइज्ड इलाज योजना बनाने में मदद कर सकता है।
इन स्थितियों के साथ जीना कैसा होता है, क्या चुनौतियां हैं और लोग कैसे मैनेज करते हैं?
इन बीमारियों के साथ जीना यकीनन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शारीरिक लक्षणों के अलावा भावनात्मक तनाव, चिंता और थकान भी आम है। बीमारी का कभी भी बढ़ जाना फ्लेयर अप अनिश्चितता पैदा करता है, लेकिन सही देखभाल, इलाज का पालन और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के साथ लोग काफी हद तक सामान्य और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं।
क्या चीजें मदद करते हैं?
काउंसलिंग, माइंडफुलनेस तकनीकें और सपोर्ट ग्रुप्स, जहां आप अपने जैसी स्थिति वाले दूसरे लोगों से मिल सकें, भावनात्मक रूप से बहुत मददगार हो सकते हैं। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे अपने लक्षणों पर नजर रखने के लिए डायरी बनाना, एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन जैसे फल, सब्जियां, ओमेगा-3 फैटी एसिड अपनाना, डॉक्टर की सलाह से हल्का व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, धूम्रपान से बचना और शराब का सेवन सीमित करना। सबसे जरूरी है नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना, दवाओं को बताए अनुसार लेना और अपने ट्रिगर्स, जिन चीजों से बीमारी बढ़ती है, के प्रति जागरूक रहना। लक्ष्य बीमारी को ज्यादा से ज्यादा समय तक शांत रिमिशन रखना है।
धन्यवाद, ये ऑटोइम्यून बीमारियों पर बहुत ही जानकारीपूर्ण बातचीत थी। अब इस अंक के आखिरी मुख्य विषय पर आते हैं, जो विज्ञान और समाज के एक और महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन को छूता है, आत्महत्या पर जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग। ये लेख डॉक्टर मालिनी श्रीवास्तव का है और ये इस बात पर जोर देता है कि मीडिया जिस तरह से इस संवेदनशील मुद्दे को कवर करता है, वो कैसे जीवन बचा सकता है या फिर अनजाने में खतरे में डाल सकता है।
हाँ, ये एक बेहद संवेदनशील और जिम्मेदारियों से भरा विषय है। शोध ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मीडिया कवरेज का आत्महत्या से जुड़े व्यवहार पर सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। दो तरह के प्रभाव देखे गए हैं। एक है वर्थर इफेक्ट।
वर्थर इफेक्ट,
इसका नाम एक पुराने उपन्यास के नाम पर पड़ा है। ये तब होता है जब आत्महत्या की खबर को बहुत सनसनीखेज तरीके से या किसी खास तरह का ब्यौरा देते हुए कवर किया जाता है।
तो इससे क्या होता है?
इससे नचा व्यवहार यानी कॉपीकैट सुसाइड का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग पहले से ही मानसिक रूप से परेशान या जोखिम में हैं, वो ऐसी खबरों से प्रभावित होकर वैसा ही कदम उठा सकते हैं। फिलिप्स ने 1974 में इस पर महत्वपूर्ण शोध किया था। भारत से भी इसके उदाहरण हैं। चेन्नई में हुई एक स्टडी, आर्या एट ऑल 2020, ने पाया कि एक मशहूर हस्ती की मौत की सनसनीखेज रिपोर्टिंग के बाद आत्महत्याओं की दर में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डेटा का विश्लेषण भी ये दिखाता है कि जब मीडिया किसी खास तरीके पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो उस तरीके से होने वाली कॉपीकैट आत्महत्याओं में बढ़ोतरी देखी जाती है। 2023 एनालिसिस।
ये तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या मीडिया सकारात्मक भूमिका निभा सकता है?
बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा प्रभाव है पैपेगैनो इफेक्ट। इसका नाम मोजार्ट के एक ओपेरा के किरदार पर है।
अच्छा।
ये तब होता है जब मीडिया आत्महत्या के विचार से जूझने, मुश्किलों से उभरने और मदद मांगने की सकारात्मक कहानियों को उजागर करता है।
अच्छा।
तो इससे क्या होता है? ऐसी कवरेज लोगों को उम्मीद देती है। ये दिखाती है कि मदद उपलब्ध है और रिकवरी संभव है। शोध जैसे निडक्रोटन थैलर एटाइल 2010 बताते हैं कि ऐसी खबरें पढ़ने के बाद लोग हेल्पलाइन पर कॉल करने या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। भारत में भी आईकॉल, वांद्रेवाला फाउंडेशन, स्नेहा जैसी हेल्पलाइन संस्थाएं ये रिपोर्ट करती हैं कि जब मीडिया जिम्मेदाराना और सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है, खासकर रिकवरी की कहानियों पर, तो उनके पास मदद के लिए आने वाली कॉल्स की संख्या बढ़ जाती है।
तो सकारात्मक कहानी कैसी होनी चाहिए?
व्यवहारिक रूप से समझाए जाएं, और सबसे जरूरी, कहानी के अंत में मदद के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे हेल्पलाइन नंबर्स या क्लिनिक की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए।
लेख में भारत से कुछ वास्तविक केस स्टडीज का भी जिक्र है ना?
हाँ, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जो इन दोनों प्रभावों को दर्शाते हैं। पहला, 2020 में एक जाने माने बॉलीवुड स्टार की दुखद मृत्यु का मामला। शुरुआती कवरेज बहुत ज्यादा सनसनीखेज थी, जिसमें अटकलें और असंवेदनशील डिटेल्स शामिल थे। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर्स पर आने वाली कॉल्स की संख्या दोगुनी हो गई। धानुका एट ऑल 2021। इस घटना ने मीडिया की भूमिका पर गंभीर बहस छेड़ दी और बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मीडिया के लिए एडवाइजरी भी जारी की।
और कोई सकारात्मक उदाहरण?
हाँ, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं का मामला। शुरुआत में रिपोर्टिंग अक्सर आत्महत्या के तरीकों या व्यक्तिगत विफलताओं पर केंद्रित रहती थी, लेकिन बाद में कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे द हिंदू ने रिपोर्टिंग का फोकस बदला। उन्होंने समस्या के गहरे संरचनात्मक कारणों जैसे कर्ज, फसल का खराब होना, पानी की कमी पर ध्यान दिया और साथ ही समाधानों जैसे सरकारी योजनाएं, सहायता समूह, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी उजागर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मदद मांगने वाले किसानों की संख्या बढ़ी। ये पापागैनो इफेक्ट का एक अच्छा उदाहरण है।
और भी उदाहरण है?
हाँ, जैसे बैंगलोर में आशा नाम की एक सर्वाइवर की कहानी। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स और कॉलेज पेपर्स ने उनकी कहानी छापी, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने थेरेपी, दोस्तों के सपोर्ट और वुंदरेवाला हेल्पलाइन की मदद से मुश्किल दौर पार किया। इसके बाद हेल्पलाइन पर कॉल्स बढ़ी। एक और मामला ब्लू व्हेल पैनिक का था। जब इस खतरनाक ऑनलाइन गेम की सनसनीखेज रिपोर्टिंग हुई तो समाज में बहुत डर फैल गया। बाद में जब मीडिया ने फोकस डिजिटल सुरक्षा, पेरेंटिंग और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेवाओं पर किया तो पैनिक कम हुआ। उत्तर भारत में रेल पटरियों पर होने वाली मौतों की विस्तृत रिपोर्टिंग के बाद एक खास स्टेशन पर ऐसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई थी। बाद में जब मीडिया ने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क रिपोर्टिंग की तो घटनाओं में कमी आई। मुंबई के एक सिंगर की रिकवरी की कहानी भी है। उनके इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया और थेरेपी व सपोर्ट ग्रुप की मदद ली। इस इंटरव्यू ने कई लोगों को हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए प्रेरित किया। ये भी पापागैनो इफेक्ट है।
ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि रिपोर्टिंग का तरीका कितना मायने रखता है। तो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश क्या हैं? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ मुख्य बातें हैं: भाषा का प्रयोग, तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग करें, आत्महत्या कर ली जैसे वाक्यांशों से बचें क्योंकि ये अपराध बोध कराता है, बेहतर है कहें आत्महत्या से मृत्यु हुई। 2, तरीकों का विवरण, आत्महत्या के तरीके का ग्राफिक या विस्तृत विवरण कभी ना दें, इससे नकाची व्यवहार बढ़ सकता है। 3, स्थान और तस्वीरें, घटना के सटीक स्थान का उल्लेख करने से बचें, खासकर अगर वो सार्वजनिक जगह हो, सनसनीखेज तस्वीरें या वीडियो प्रकाशित ना करें। 4, उम्मीद और मदद पर जोर, रिकवरी की कहानियों और मदद मांगने के सकारात्मक अनुभवों पर जोर दें। हर रिपोर्ट के साथ विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के नंबर जैसे वंदरेवाला फाउंडेशन 1860-266-2345 या किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 और अन्य संसाधनों की जानकारी जरूर दें।
और
5, विशेषज्ञों से सलाह। रिपोर्टिंग से पहले या उसके दौरान मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल से सलाह लेना मददगार हो सकता है। 6, सनसनीखेज और अटकलों से बचें। खबर को सरल बनाएं, सनसनीखेज हेडलाइन, अनावश्यक विवरण या अटकलों से बचें। मौत के कारणों को ज्यादा सरल न बताएं। 7, सहायक संसाधन, जैसा मैंने कहा, हर रिपोर्ट में सहायक संसाधन उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण है।
ये तो पत्रकारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हुई, न्यूज़ रूम्स या मीडिया संस्थान अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं?
न्यूज़ रूम्स की भूमिका बहुत अहम है। उन्हें चाहिए कि अपने पत्रकारों और संपादकों के लिए इस विषय पर नियमित ट्रेनिंग आयोजित करें। WHO और प्रेस काउंसिल के दिशा निर्देशों को अपनी संपादकीय नीतियों का हिस्सा बनाएं। संवेदनशील कहानियों की समीक्षा के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया अपनाएं, जिसमें संपादक, पत्रकार और जरूरत पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों। नैतिक पत्रकारिता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा दें।
अंत में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की ताकत पर एक विचार।
जिम्मेदार रिपोर्टिंग का मतलब खबरों को दबाना या सेंसर करना नहीं है। इसका मतलब है कहानियों को इस तरह से बताना कि जीवन बचाया जा सके, कलंक कम हो और मदद ढूंढने वालों को सही रास्ता मिले। मीडिया के पास ये शक्ति है कि वो त्रासदी को तमाशा बनाने के बजाय सहानुभूति, जागरूकता और समाधान के लिए एक आह्वान बना सकता है। शब्द मायने रखते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल किए गए शब्द आशा के पुल बना सकते हैं। ये सिर्फ एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी है।
बिल्कुल। तो साइंस प्रिज्म के इस अंक ने हमें कई गहरी जानकारियां दी, दवाओं की सटीक खुराक और पर्सनलाइज्ड जेनेटिक्स की बारीकियों से लेकर ऑटो इम्यून बीमारियों की जटिलताओं और मीडिया की महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी तक। और हाँ, हमने डॉक्टर रश्मि रे जैसे साइंस शेपर के बारे में भी जाना, जिनका इम्यूनोलॉजी में काम, खासकर बी सेल प्रतिक्रियाओं और टीकों के लिए क्रिस्पर मॉडल पर विज्ञान के प्रति गहरे समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है।
इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि चाहे वो दवा की हाफ लाइफ का सटीक कैलकुलेशन हो, एक खास जीन वेरिएंट की पहचान हो, एक इम्यून सेल की पहचान में हुई गलती हो, या फिर एक मीडिया हेडलाइन का मनोवैज्ञानिक असर हो, हर जगह हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी बारीकियों को, न्यूआंसेस को समझना हमें सतही या सामान्य अनुमानों से हटाकर ज्यादा सटीक लक्षित कार्यों की ओर ले जाता है।
हाँ, ये बात तो है।
विज्ञान के इन अलग अलग क्षेत्रों में ये जो सटीकता, प्रिसिजन और बारीकी पर जोर दिख रहा है, क्या ये सोच जीवन या समाज के उन दूसरे क्षेत्रों को भी बदल सकती है जहां हम शायद अभी भी वन साइज फिट्स ऑल या मोटे अनुमान वाले दृष्टिकोण पर ही निर्भर है, जैसे शिक्षा में या नीति निर्माण में?
ये वाकई सोचने वाली बात है कि विज्ञान से मिली ये सीख हम और कहां लागू कर सकते हैं। आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।